एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो लिखी तो दशकों पहले गई थी,
बिल्कुल,
लेकिन जिसकी गूंज मतलब आज भी हमारे समाज में, हमारी सोच में, पहचान से जुड़े सवालों में सुनाई देती है।
बिल्कुल, मैं हूं आपकी दूसरी साथी इस सफर में, और आज हम बात कर रहे हैं फ्रांस फिनॉन की बहुत ही जबरदस्त किताब ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क्स, मतलब अश्वेत चमड़ी श्वेत मुखौटे।
हाँ, और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ कोई इतिहास का दस्तावेज नहीं है, ये तो उपनिवेशवाद के उन मनोवैज्ञानिक जख्मों का विश्लेषण है जो शायद आज भी मतलब पूरी तरह भरे नहीं है।
सही कहा, और ये आज इसलिए भी इतनी जरूरी है मुझे लगता है क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे बाहरी दबाव, समाज के जो पैमाने होते ना, वो किसी इंसान की आत्मा तक को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, कैसे कोई अपनी ही पहचान से एक तरह से लड़ने लगता है। तो चलिए इस मुश्किल पर जरूरी विषय की परतें खोलते हैं।
हाँ जरूर, तो शुरुआत लेखक से ही करते हैं। फ्रांस फेनॉन कौन थे ये?
बताइए।
फेनॉन का जन्म 1925 में हुआ था करीबियन द्वीप मार्टिनिक में, जो उस वक्त आप जानते हैं फ्रांस का उपनिवेश था।
अच्छा।
और वो पेशे से तो मनोचिकित्सक थे, पर साथ ही एक गहरे दार्शनिक, एक क्रांतिकारी विचारक भी थे। फ्रांस में पढ़े, फिर अल्जीरिया का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें काफी सक्रिय रहे। और दुखद है कि सिर्फ 36 साल की उम्र में ही 1961 में उनका देहांत हो गया।
बहुत कम उम्र में। उनके नजरिए में क्या खास बात थी, मतलब क्यों उनका विश्लेषण इतना अलग माना जाता है?
देखिए, उनकी खासियत ये थी कि वो जैसे दो दुनियाओं को एक साथ जी रहे थे और समझ भी रहे थे।
अच्छा।
कैसे? एक तरफ तो वो फ्रांस में पढ़े लिखे अश्वेत व्यक्ति थे, तो उन्होंने खुद वो नस्लवाद, वो परायापन, जिसे वो एलियनेशन कहते हैं,
हाँ, एलियनेशन,
उसका जहर खुद महसूस किया था। वो जिसे श्वेत निगाह कहते हैं ना,
हाँ सुना है इसके बारे में,
मतलब हमेशा गोरे लोगों की नजर से देखे जाने, परखे जाने का बोझ,
हाँ,
वो उन्होंने खुद उठाया था।
समझ गया। और दूसरी तरफ?
और दूसरी तरफ उनका क्लिनिकल अनुभव, जब अल्जीरिया में आजादी की लड़ाई चल रही थी,
हाँ,
वो एक बड़े मनोरोग अस्पताल के हेड थे,
ओ,
तो वहां उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ये जो उपनिवेशी शासन की क्रूरता है, जो नस्लवाद है, वो लोगों के दिमाग पर क्या असर डालता है।
अच्छा।
और सिर्फ अल्जीरियाई लोगों पर नहीं,
हाँ,
फ्रांसीसी सैनिकों पर भी।
मतलब
उनके मरीज दोनों तरफ के थे।
उन्होंने दोनों के मानसिक आघात देखे,
बापरे,
तो मतलब उनके पास ये निजी अनुभव भी था और वो डॉक्टरी समझ भी थी।
बिल्कुल, और साथ में समाज बदलने का एक जज्बा भी था। तो ये जो किताब है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, ये उनकी पहली बड़ी किताब थी, और सोचिए सिर्फ 27 साल की उम्र में लिखे।
कमाल है, 27 साल।
हाँ, इसीलिए ये किताब सिर्फ कोई सूखी अकेडमिक किताब नहीं है, ये बहुत निजी है, बहुत भावुक है, और कहीं कहीं तो मतलब विस्फोटक भी लगती है पढ़ने में।
तो इसमें क्या क्या है, मतलब किस तरह का विश्लेषण है?
इसमें आपको मनोविश्लेषण की परतें मिलेंगी, दर्शन की गहराई मिलेगी, साहित्य का भी विश्लेषण है। ये किताब जिसे हम आज पोस्ट कलोनियल स्टडीज या क्रिटिकल रेस थ्योरी कहते हैं ना,
हाँ,
ये उसकी नींव रखने वाले टेक्स्ट्स में से एक मानी जाती है। बहुत प्रभावशाली।
समझ गया। चलिए तो अब थोड़ा किताब के अंदर चलते हैं।
हाँ,
इसका मूल विचार क्या है, क्या कहना चाहते हैं फेनॉन?
देखिए, ये किताब असल में उपनिवेशवाद के साये में जो अश्वेत व्यक्ति जी रहा है ना,
हाँ,
उसकी अंदरूनी दुनिया का एक सफर है।
अंदरूनी दुनिया का।
हाँ, फिनॉन का मकसद है उस मनोवैज्ञानिक चोट को समझना और दिखाना, वो हीन भावना, वो खुद से नफरत जो एक नस्लभेदी सिस्टम अपने शिकार के मन में भर देता है।
ओह, तो ये सिर्फ बाहरी भेदभाव की बात नहीं है?
बिल्कुल नहीं, यही तो खास बात है। उनका केंद्रीय तर्क यह है कि जो उपनिवेशी दुनिया है ना, वो एक बहुत चालाक खेल खेलती है। वो श्वेतता यानी गोरे रंग, उनकी संस्कृति, भाषा, सोच, इन सबको ही इंसानियत, सुंदरता, बुद्धिमानी, सभ्यता का एकमात्र पैमाना बना देती है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड।
अच्छा, मतलब गोरापन ही सब कुछ है, बाकी सब कमतर।
एग्जैक्टली, और इसका नतीजा क्या होता है कि अश्वेतता यानी काले रंग से जुड़ी हर चीज वो अपने आप उसकी उल्टी मान ली जाती है, पिछड़ी, बदसूरत, कमतर, जंगली। और फेनॉन जोर देकर कहते हैं कि ये सोच सिर्फ बाहर नहीं रहती, ये पीड़ित के अंदर तक बैठ जाती है, वो खुद को वैसा ही मानने लगता है।
ये तो बहुत भयानक है,
है ना? तो ये किताब एक आईने की तरह है, एक तरफ उपनिवेश के शिकार लोगों के लिए, ताकि वो समझें कि उनके अंदर जो बेचैनी है, जो खुद से लड़ाई है, वो उनकी कमी नहीं बल्कि उस सिस्टम की देन है। और दूसरी तरफ उस श्वेत दुनिया के लिए भी, ताकि वो देखे कि उसका बनाया हुआ ढांचा कितनी गहरी मानसिक हिंसा करता है। ये कोई सीधी सीधी कहानी नहीं है, बल्कि एक घायल चेतना की भूल भुलैया में एक मनोविश्लेषणात्मक गोता लगाने जैसा है।
ठीक है, तो अब किताब के कुछ अहम हिस्सों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। फेनॉन शुरुआत कहां से करते हैं?
वो शुरू करते हैं पहले अध्याय से, जिसका नाम ही है अश्वेत व्यक्ति और भाषा। यहां वो अपना मकसद साफ करते हैं, वे अलगाव।
वे अलगाव मतलब
इंसान को उस मानसिकता से आजाद करना जिसने उसे खुद से ही पराया कर दिया है।
और इसके लिए वो भाषा को चुनते हैं, ये थोड़ा अजीब नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फेनॉन के लिए भाषा सिर्फ बोलने का जरिया नहीं है, वो पहचान का प्रतीक है। वो कहते हैं कि मार्टिनिक जैसे उपनिवेश के आदमी के लिए शासक की भाषा यानी फ्रेंच बोलना,
हाँ,
वो सिर्फ बातचीत नहीं है, वो एक तरह का श्वेत मुखौटा पहनना।
श्वेत मुखौटा पहनना मतलब फ्रेंच बोलने से वो ज्यादा सभ्य या बेहतर माने जाएंगे।
बिल्कुल, फ्रेंच में महारत हासिल करना मतलब श्वेत दुनिया के करीब पहुंचना, थोड़ी इज्जत पाना, और अपनी जो मूल भाषा है जैसे क्रियोल, वो बोलना मतलब पिछड़ापन, गवारूपन।
ओह, तो भाषा ही ऊंच नीच तय कर रही है।
हाँ, और ये भाषा की ऊंच नीच मन में गहरा बंटवारा पैदा करती है। इंसान अपनी ही जड़ों से, अपनी विरासत से शर्मिंदा होने लगता है। भाषा पहचान की जंग का मैदान बन जाती है।
ये तो बहुत गहरी बात है। इसके बाद वो कहाँ जाते हैं?
इसके बाद फेनॉन रिश्तों की दुनिया में उतरते हैं, लेकिन वहां भी उपनिवेशवाद का साया है। अध्याय दो है अश्वेत महिला और श्वेत पुरुष। यहाँ वो विश्लेषण करते हैं कि क्यों कुछ अश्वेत महिलाएं श्वेत पुरुषों के प्रति आकर्षित होती है। एक उपन्यास का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि ये चाहत अक्सर सच्चे प्यार की नहीं बल्कि दुग्धीकरण की होती है, लैक्टिफिकेशन।
दुग्धीकरण, ये कैसा शब्द है?
हाँ, ये फेनॉन का शब्द है। इसका मतलब है खुद को और अपनी आने वाली पीढ़ी को किसी तरह सफेद या श्वेत बना लेने की एक मनोवैज्ञानिक एक बीमार कोशिश।
ओह माय गॉड, मतलब अपनी पहचान को ही नकार देना।
बिल्कुल, ये अंदरूनी तौर पर नस्लवाद को अपना लेने जैसा है, जहां आपका मूल्य इस बात से तय होता है कि आप श्वेतता के कितने करीब है। बहुत दुखद है ये।
और फिर अगला अध्याय पुरुषों पर है।
हाँ, अध्याय तीन अश्वेत पुरुष और श्वेत महिला। ये उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। यहां भी फेनॉन एक उपन्यास के जरिए तर्क देते हैं कि अश्वेत पुरुष के लिए श्वेत महिला का प्रेम पाना,
हाँ,
वो महज प्यार नहीं बल्कि श्वेत पुरुष के बराबर मान्यता और शक्ति पाने का एक प्रतीक बन सकता है, एक तरह की जीत।
तो ये भी एक तरह की ग्रंथि हुई।
हाँ, फेनॉन दोनों ही स्थितियों को एक न्यूरोसिस मानते हैं, एक मानसिक ग्रंथि जिसकी जड़ें उस गहरी हीन भावना में हैं जो उपनिवेशी समाज पैदा करता है। ये इंसान का इंसान से रिश्ता कम और उस दुनिया से अपनी इंसानियत का सर्टिफिकेट मांगने की हताश कोशिश ज्यादा है, जो दुनिया उसे इंसान समझती ही नहीं।
समझ गया। इसके बाद फेनॉन एक और धारणा पर चोट करते हैं ना, वो निर्भरता वाली बात।
हाँ बिल्कुल, अध्याय चार है उपनिवेशितों का तथाकथित निर्भरता कॉम्प्लेक्स। एक विचारक थे ऑक्टेव मन्नोनी, उनका कहना था कि जिन लोगों पर राज किया गया ना, उनमें पहले से ही निर्भर रहने की आदत थी, इसीलिए वो गुलाम बने।
अरे, ये तो पीड़ित को ही दोष देना हुआ।
वही तो, फेनॉन इसे पूरी तरह खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि ये बकवास है, अगर कोई निर्भरता दिखती भी है तो वो उपनिवेशी हालात ने पैदा की है, वो लोगों का स्वभाव नहीं था।
सही बात है,
आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक गुलामी ही लोगों में बेबसी और निर्भरता भरती है। उपनिवेशक के आने से पहले ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था, समस्या लोगों में नहीं उस बीमार सिस्टम में है।
ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अब आते हैं उस अध्याय पर जिसके बारे में बहुत बात होती है, अध्याय फाइव अश्वेतता का तथ्य।
हाँ, द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द ब्लैक मैन या द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस, ये शायद सबसे ज्यादा झकझोड़ने वाला अध्याय है। यहाँ फेनॉन अकेडमिक विश्लेषण छोड़कर अपने निजी, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव पर आते हैं।
क्या हुआ था उनके साथ?
वो उस पल का वर्णन करते हैं जब वो फ्रांस में सड़क पर चल रहे थे और एक छोटे से श्वेत बच्चे ने अपनी माँ से कहा, देखो माँ, एक नीग्रो, मुझे डर लग रहा है।
ओह।
फेनॉन लिखते हैं कि उस एक पल में वो सिर्फ फ्रांस फेनॉन एक इंसान नहीं रहे, वो अचानक एक चीज बन गए, एक स्टीरियोटाइप, सिर्फ अश्वेत होने का एक तथ्य, द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस।
ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है, कैसा महसूस हुआ होगा उन्हें?
उन्हें लगा जैसे वो अपनी ही चमड़ी में कैद हो गए हैं, जिसे बाहर की दुनिया या तो नफरत से देख रही है या डर से। उन्हें महसूस हुआ कि उन पर उन सारे नस्लेवादी विचारों और कहानियों का बोझ डाल दिया गया है जो सदियों से अश्वेत लोगों के बारे में गढ़े गए थे, नरभक्षण, जंगलीपन, बौद्धिक कमी वगैरह वगैरह। ये है नस्लीय वस्तुकरण, रेशियल ऑब्जेक्टिफिकेशन की पीड़ा, जब आपको इंसान नहीं एक चीज समझा जाता है। इसके बाद वो फिर मनोविश्लेषण पर लौटते हैं।
हाँ, अध्याय 6 में अश्वेत व्यक्ति और मनोविकृति।
यहाँ वो फिर कहते हैं कि उपनिवेशी माहौल खुद ही रोग पैदा करने वाला है,
पैथोजेनिक।
और यहाँ वो फ्रॉइड की भी आलोचना करते हैं।
फ्रॉइड की क्यों? ओडिपस कॉम्प्लेक्स वाली बात।
हाँ, खासकर ओडिपस कॉम्प्लेक्स। फेनॉन कहते हैं कि फ्रॉइड का ये मॉडल हर समाज पर, खासकर मार्टिनिक जैसे उपनिवेश पर लागू नहीं होता। वहां असली सत्ता का केंद्र पिता नहीं होता,
हाँ,
बल्कि दूर बैठा श्वेत शासक होता है। तो अश्वेत व्यक्ति का जो असली मानसिक संघर्ष है वो पारिवारिक कम और सामाजिक ज्यादा है। उसका टकराव उस नस्ल भेदी दुनिया से है जो उसे इंसान नहीं समझती। यही वो सोशियोजेनिक आघात की बात करते हैं, यानी समाज से पैदा हुआ मानसिक आघात।
सोशियोजेनिक, ये नया शब्द है, मतलब समाज ही बीमार कर रहा है।
बिल्कुल। फिर आता है अध्याय 7, अश्वेत व्यक्ति और मान्यता। यहाँ फेनॉन जर्मन दार्शनिक हेगल का सहारा लेते हैं।
हेगल, वो माली गुलाम वाली बात।
हाँ, वही। हेगल ने कहा था कि इंसान अपनी पहचान दूसरे इंसान के साथ संघर्ष करके और एक दूसरे को मान्यता, रिकग्निशन देकर हासिल करता है। लेकिन फेनॉन कहते हैं कि उपनिवेश में ही हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि श्वेत मालिक अश्वेत गुलाम को बराबरी का इंसान मानता ही नहीं। जिससे संघर्ष करके मान्यता मिले वो उसे सिर्फ एक वस्तु, एक औजार समझता है।
तो वो संघर्ष का मौका ही नहीं मिलता।
एग्जैक्टली। अश्वेत व्यक्ति को वो संघर्ष ही नसीब नहीं होता जिससे सच्ची मानवीय पहचान बनती है। मालिक से मिली पहचान तो झूठी है, वो असली मान्यता नहीं है।
तो फिर रास्ता क्या है? अगर मालिक से मान्यता नहीं मिल सकती तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी?
इसका जवाब फेनॉन अपने निष्कर्ष में देते हैं। वो एक नए रेडिकल मानवतावाद का आह्वान करते हैं। वो कहते हैं कि हमें अतीत के बोझ से मुक्त होना होगा।
कैसा बोझ?
मतलब उपनिवेशवाद ने जो अश्वेत और श्वेत की परिभाषाएं हम पर थोप दी हैं, उनसे आजाद होना होगा। हमें इतिहास का और पूरी नस्ल का प्रतिनिधि बनने का बोझ ढोने से इनकार करना होगा। हमें खुद को परिभाषित करना होगा।
और वो आखिरी लाइन जो है किताब की,
हाँ, वो प्रार्थना जैसी है। हे मेरे शरीर, मुझे हमेशा एक ऐसा आदमी बनाओ जो सवाल करता है।
कमाल है, मतलब रुकना नहीं है, सवाल पूछते रहना है।
बिल्कुल। ये लगातार सवाल पूछने, बनी बनाई पहचानों को नकारने और आजादी के लिए लड़ने का एक अंतहीन आवाहन है।
वाकई बहुत ही गहरा और बेचैन कर देने वाला विश्लेषण है।
हाँ,
तो अगर हम मुख्य संदेशों को समेटने की कोशिश करें तो पहला क्या होगा?
मेरे ख्याल से पहला तो यही कि उपनिवेशवाद सिर्फ जमीन या संसाधन नहीं लूटता, वो इंसान की आत्मा पर हमला करता है, उसमें गहरी हीन भावना भर देता है।
दूसरा,
भाषा का महत्व। ये सिर्फ संवाद का जरिया नहीं, ये शक्ति और पहचान का मैदान है। शासक की भाषा अपनाना अक्सर अपनी पहचान से समझौता करने जैसा हो सकता है।
तीसरा,
वो श्वेत निगाह वाला कॉन्सेप्ट, कैसे नस्लवादी समाज में आपको आपकी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरों की नज़रों से, उनके पूर्वाग्रहों से परिभाषित किया जाता है। आपको एक वस्तु या स्टीरियोटाइप बना दिया जाता है।
हाँ, और चौथा,
कि ये नस्लवाद का जहर रिश्तों तक में घुस जाता है। प्यार और चाहत जैसी निजी भावनाएं भी सामाजिक दबाव और हीन भावना से विकृत हो सकती हैं।
और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है,
कि सिर्फ दूसरों में घुलमिल जाने की कोशिश करना, वो श्वेत मुखौटा पहनना, वो आज़ादी नहीं है, वो कभी फिट नहीं होगा। सच्ची मुक्ति के लिए उस पूरे नस्लभेदी ढांचे को ही चुनौती देनी होगी और एक नई बराबरी वाली इंसानियत गढ़नी होगी।
या एक पल रुककर सोचने वाली बात है, क्या आज भी हमारे अपने समाज में, जैसे भारत में हम जानते हैं कि हम भी उपनिवेशवाद से गुजरे हैं,
हाँ,
तो क्या हम आज भी ऐसी मानसिकता के कुछ निशान देखते हैं? जैसे पता नहीं गोरे रंग को लेकर जो एक आकर्षण है, या अपनी भाषा अपनी संस्कृति को लेकर कभी कभी एक हिचक महसूस करना।
ये बहुत अहम सवाल है, शायद श्रोता इस पर सोच सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, अब कुछ उन यादगार पंक्तियों या विचारों पर बात करते हैं जो इस किताब से निकल कर आते हैं। फेनॉन की लिखाई में ऐसी कई जगह हैं जो एकदम से मतलब चौंका देती हैं।
हाँ, जैसे वो एक लाइन है, अश्वेत आदमी के लिए केवल एक ही भाग्य है और वो है श्वेत होना।
ये सुनने में कितना सख्त लगता है, लेकिन ये उस भयानक दबाव को दिखाता है जहां श्वेत होना ही एकमात्र मंजिल, एकमात्र आदर्श मान लिया गया था और अपनी पहचान को मिटा देने ही रास्ता समझा गया।
या फिर वो पंक्ति जो उस बच्चे वाले अनुभव से निकली थी, देखो एक नीग्रो, मैं एक ही समय में अपने शरीर, अपनी जाति, अपने पूर्वजों के लिए जिम्मेदार था, और मैं टॉम, नरभक्षण, बौद्धिक कमी, नस्लीय दोष, गुलाम जहाजों से पीटा गया था।
बाप रे, ये उस पल की हिंसा को पकड़ता है जब एक व्यक्ति से उसकी इंसानियत छीन ली जाती है और उस पर पूरी नस्ल के बारे में गढ़े गए सारे झूठ और पूर्वाग्रह लाद दिए जाते हैं।
और एक सीधी लेकिन बहुत गहरी बात, उत्पीड़ित हमेशा अपने बारे में सबसे बुरा विश्वास करेंगे।
यह है वो अंदरूनी गुलामी का सार, है ना? कैसे सिस्टम आपको यकीन दिला देता है कि आप वाकई कमतर हैं, आप खुद ही मानने लगते हैं।
बिल्कुल, और अंत में वो प्रार्थना जो एक तरह का मंत्र बन गई है, हे मेरे शरीर, मुझे हमेशा एक ऐसा आदमी बनाओ जो सवाल करता है।
ये सिर्फ हार मानने का नहीं बल्कि सक्रिय प्रतिरोध का, लगातार जागरूक रहने का और बनी बनाई परिभाषाओं को चुनौती देने का आह्वान है। आजादी कोई मंजिल नहीं, एक सफर है।
तो अब सवाल ये उठता है कि ये विचार जो इतने साल पहले लिखे गए थे, आज हमारे लिए कैसे मायने रखते हैं? क्या हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं?
मुझे तो लगता है हाँ बिल्कुल। पहला तो ये हमें सिस्टमिक रेसिज्म यानी व्यवस्था में बसे पूर्वाग्रहों और रोजमर्रा के छोटे छोटे भेदभावों को समझने में मदद करते हैं, जिन्हें माइक्रो एग्रेशन कहते हैं।
जैसे
किसी खास तरह से दिखने वाले इंसान को दुकान में शक की नज़र से देखा जाना, या उसे बार बार पूछा जाना कि तुम असल में कहाँ से हो। फेनॉन बताते हैं कि ये छोटी बातें नहीं हैं, ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, ये वही श्वेत निगाह है।
हाँ, और दूसरा, ये हमें सुंदरता, सफलता या सही व्यवहार के अपने अंदरूनी पैमानों पर सवाल उठाने की हिम्मत देते हैं। कहीं हम अनजाने में वही मुखौटे तो नहीं पहन रहे? मतलब चाहे वो त्वचा के रंग को गोरा करने की कोशिश हो, या अपने बालों को सीधा करने की, या सिर्फ किसी खास समूह में फिट होने के लिए अपनी भाषा या लहजा बदलना, ये सब आज के श्वेत मुखौटे हो सकते हैं।
ये तो बहुत सोचने वाली बात है। और
तीसरा, हम मीडिया को ज्यादा आलोचनात्मक नजर से देख सकते हैं। फिल्में, विज्ञापन, खबरें, क्या वो अलग अलग समूहों को लेकर बनी बनाई छवियों को, स्टीरियोटाइप्स को मजबूत कर रहे हैं या उन्हें तोड़ रहे हैं? और चौथा, ये व्यक्तिगत प्रामाणिकता की बात है। फिनॉन का संदेश है कि अपनी पहचान बाहरी दुनिया की मंजूरी से मत तलाशो, बल्कि अपने अंदर की आवाज और अपने संघर्षों से गढ़ो। और ये समझना कि कई बार हमारी जो मानसिक परेशानी है, वो हमारी निजी कमी नहीं बल्कि एक अन्यायपूर्ण समाज पर हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, वो सोशोजेनिक आघात।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि नस्लवाद या कोई भी ऐसा गहरा सामाजिक भेदभाव, वो सिर्फ बाहरी अन्याय नहीं है, ये इंसान की आत्मा पर एक हमला है जो उसे खुद से ही मतलब पराया कर सकता है।
और मेरे लिए सबसे शौक आने वाली बात फेनॉन की दूरदर्शिता थी। उन्होंने दशकों पहले ये देख लिया था कि किसी दमनकारी व्यवस्था में सिर्फ शामिल हो जाना या उसकी नकल करना, वो आज़ादी नहीं लाता, वो तो एक तरह से गुलामी को और गहरा कर सकता है। सच्ची आज़ादी के लिए सिस्टम से भी लड़ना होगा और अपने अंदर बैठी उस गुलामी की सोच से भी।
बिल्कुल, फेनॉन का सपना सिर्फ बराबरी का नहीं था बल्कि एक ऐसी नई दुनिया का था जहां इंसान को उसकी चमड़ी या उसकी पहचान के बने बनाए खांचों में कैद ना किया जाए, एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई सवाल करने के लिए आज़ाद हो। ये सोचना वाकई जरूरी है कि हम उस सपने के कितने करीब या कितने दूर हैं आज।
लिखिए अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।